समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। नए संवत्सर की शुभकामनाओं के साथ हरिवंश राय बच्चन की इस कविता से शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, प्रीति नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। इस जीवन में सब कुछ अब नया होगा, नई आशाएं, नए संकल्प, नए लक्ष्य और नया संवत्सर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जो मनाया जा रहा है, यही हमें संदेश दे रहा है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम बताएंगे आपको कि देश के किस हिस्से में किस नाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है और आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की जानकारी, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा है खास, खेल के मैदान की हलचल होगी और जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि या फिर जयंती या आज है उनका जन्मदिन। परिक्रमा के आज के संक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो जागृति, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन ऑन द फेस्टिवल्स बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया टुडे। यू ऑफ कोर्स आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट जागृति, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। The government says 100% supply of domestic PNG and CNG for transportation purposes has been ensured across the country.
सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए रेजिलियंस और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप योजना शुरू की। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
Party also releases second list of 39 candidates for Kerala assembly polls.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना की।
Defence Minister Rajnath Singh says MSMEs are emerging as important pillar of defence manufacturing sector in the country. And in Allianz Masters Badminton, India's Ayush Shetty to take on Yudai Okimoto of Japan in the men's singles round of 16 in France today. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about festivals being celebrated across India today.
शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई।
Yes, and today we bring you a vibrant and colourful celebration from across the country. India is buzzing with joy as several New Year festivals have been celebrated today in different regions, each with its own unique traditions and cultural charm. From north to south, east to west, India is glowing with multiple New Year festivals which have been celebrated together, each unique, each yet beautifully connected.
बिल्कुल खूबसूरत एक गुलदस्ते में तरह तरह के फूलों की तरह हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण की ओर विभिन्न हिस्सों में चैत्र नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, नवरेह और साजिबू चिरोइबा जैसे नववर्ष के त्यौहार मनाए जा रहे हैं और शक्ति साधना और संयम का जो उत्सव है चैत्र नवरात्रि, इसी से शुरुआत करते हैं। देवी दुर्गा को समर्पित ये नौ पवित्र रात्रियां आज भोर से ही मंदिरों में मंत्रोच्चारण से वातावरण गूंज रहा है, घर दियों से जगमगा रहे हैं और वातावरण भक्तिमय है। हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर की पारंपरिक शुरुआत का प्रतीक चैत्र शुक्लादि आज मनाया जा रहा है। ये जीवन में नई शुरुआत, नए विचार और नए संकल्पों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आदर्श समय है।
Yes, and the vibrant festival of Chaitra Navratri has begun today, with devotees across the country celebrating the nine auspicious days with great zeal and devotion. The nine-day festival commenced with the offering of morning aarti at temples, including in the national capital, where a large number of devotees gathered to seek blessings. We have a report.
Navratri, which means nine nights, is dedicated to the worship of Goddess Durga and her nine forms, collectively known as Nav Durga. Each day is devoted to a different manifestation of the goddess, symbolizing power, purity and wisdom. Though four Navratris are observed annually, Chaitra Navratri and Shardiya Navratri are the most widely celebrated. Chaitra Navratri holds special significance as it coincides with the onset of spring and the beginning of the Hindu New Year, symbolizing spiritual purification and new beginnings, which is celebrated in various forms across the country. Devotees observe fast during the 9 days, consuming sattvic food. The festival also marks the worship of the divine feminine power, Shakti. With Rohan Shiva Mishra for Akashwani News, Delhi.
और अब चलते हैं देश के दक्षिणी हिस्से की ओर, जहां उगादी उत्सव हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
बंदितु ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಡಗರ ತಂದಿತು ಹಬ್ಬ
ಬಂದಿತು ಬಂದಿತು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಡಗರ ತಂದಿತು ಹಬ್ಬ
ದೇವಿನ ಕಹಿದೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿತು ಹಬ್ಬ
ಬಂದಿತು ಬಂದಿತು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ
Yes, and homes are decorated with mango leaves and families relish the famous Ugadi Pathri, a dish symbolizing life's different emotions. People welcome new beginnings with traditional rituals.
Homes, temples and public spaces across the state reflected the festive spirit. Families prepared Ugadi Pachadi and listened to Panchanga Sravanam, symbolizing life's mix of experiences. Chief Minister N. Chandrababu Naidu attended the main celebrations in Vijayawada. He greeted the people and extended Ugadi wishes to all. Marking the occasion, he signed a file under the Chief Minister's Relief Fund to release 55 crore rupees as financial assistance to around 6,800 beneficiaries. In his address, the Chief Minister explained the meaning of Ugadi. He said, Ugadi Pachadi reflects both joy and challenges in life. Telugu festivals teach values and promote a healthy lifestyle. He added that many traditions are linked to nature and have scientific significance. He urged people to preserve Telugu culture and traditions. The celebrations also honored talent across the state. Allu Murli, Akashwani News, Vijayawada.
Maharashtra mein Gudi Padwa ke bhavya utsav se vatavaran jeevant ho utha hai. Chamkile kapde, neem ki pattiyan aur chamakte hue ghade se bani pratishthit gudi ko इस समय पर ऊंचा फहराया जाता है, जो विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
And in the Sindhi community, it's time for Cheti Chand, celebrating the birth of Jhulelal. Processions, devotional songs and cheerful gatherings fill the day with faith and happiness.
और कश्मीर की सुंदर और शांत घाटियों में नवरेह सार्थक नववर्ष का प्रतीक है। यहां लोग अपने परिवार के साथ अपने दिन की शुरुआत चावल, सिक्कों और पुस्तकों से भरी एक पवित्र थाली को देखकर करते हैं, जो समृद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं।
Yes, and in Manipur, the festival of Sajibu Chairoba brings a unique tradition. Families prepare delicious meals and climb hilltops, symbolizing a rise towards greater success in the coming year.
बिल्कुल, और ये सब सुनने में देखने में लगता है कि कई अलग अलग देशों की ये संस्कृतियां होंगी, अलग अलग सभ्यताएं होंगी, लेकिन ये हमारे पूरे भारत वर्ष में अलग अलग जगहों पर जो विविधताएं हैं ये फैली हुई हैं, ये भारत में ही संभव हैं, जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन भावना सबकी एक ही है, आशा, नवजीवन और आनंद। और यही भारत की विशेषता है, विविधता में एकता की। भारत के नववर्ष के त्यौहार जैसे चैत्र, नवरात्रि, उगादि, गुड़ी पाड़वा, चेटीचंद, नवरेह और साजिबू चिरोइबा केवल सांस्कृतिक या धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि ये अभिषेक देखा जाए तो जो देश के जो हमारी जो फसल है हमारे यहाँ अलग अलग टाइम पर आती है, और इस समय फसल नई जो आ रही है, जो हमारी जिसे कहते हैं ना कि अपने घर में नया जब भी अनाज आता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं हम सबके साथ में, तो ये इससे जुड़े हुए हैं सारे त्योहार। चैत्र महीने में खासकर की जो रबी की फसल होती है इसके अंत का प्रतीक होता है, तो अपने घर में फसल जब किसान लेकर आते हैं तो इस तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं।
Time for new beginnings and a time to look ahead with optimism, isn't it?
Bilkul.
And farmers harvest crops such as wheat, barley and pulses during this time, making it a period of abundance, gratitude and renewal. The celebrations reflect thanksgiving to nature and deities for a successful harvest and prayers for future prosperity. For example, during Ugadi and Guri Parva, the preparation of special foods symbolizes the variety of experiences in life, much like the outcomes of farming seasons. Chaitra Navratri emphasizes spiritual cleansing and renewal, aligning with the agriculture cycle of preparing land for the next sowing season. And Cheti Chand and Navrehe also mark new beginnings, where communities express hope for fertile lands and good yields ahead.
और श्रोता आपको बताएं कि जो साजिबू चिरोइबा उत्सव मनाया जाता है, इसमें जो परिवार हैं वो ताजी मौसमी जो उपज है उसे पकाते हैं, नई कटी फसलों के ये महत्व को दर्शाता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो भी त्योहार हैं ये मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध का जश्न मनाने का अवसर है। ये त्योहार धरती का आभार व्यक्त करने, समृद्धि का जश्न मनाने और आशा तथा आनंद के साथ नए कृषि वर्ष का स्वागत करने का प्रतीक भी है।
हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई।
और अभी हमने देश के अलग अलग हिस्सों से जाना कि आज कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके क्षेत्रों में क्या कुछ खास हो रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर।
यस, एंड वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री लाइक जागृति वाज सेइंग, एंड वी ज़ूम इन टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। Sikkim, a state of northeast, a serene place in the adobe of the Himalayas, is hosting Sikkim International Film Festival. The festival starting from today and will continue up to the 22nd of March. And the inaugural festival had the august presence of Governor of Sikkim, Om Prakash Mathur, and Chief Minister Prem Singh Tamang.
Sikkim, a state of northeast, a serene place in the adobe of Himalayas, hosting Sikkim International Film Festival from today. The festival will continue up to 22nd March. The inaugural festival had the august presence of Governor of Sikkim, Om Prakash Mathur, and Chief Minister Prem Singh Tamang. Ms. Annapurna Ale, Secretary, Department of Information and Public Relations, Government of Sikkim, and Director, Sikkim International Film Festival, said, "Sikkim is excited to host this international event." Ale added, "This is not just a film festival, but a celebration and appreciation of local voices and immense creativity." During the inaugural event, three notable filmmakers have been felicitated by Chief Minister of Sikkim, namely Tribeni Rai, Prashant Rasaili and Samten Bhutia. Moving forward, prizes have been distributed for short film competition as a part of Sikkim International Film Festival 2026. The competition was open to Sikkim, Nepal, Bhutan and North Bengal. They received cash prizes of Rs 3 lakhs for winner, Rs 2 lakh for runner-up and 1 lakh for third prize. Sujan Ishan Lamzel from Mongpu, West Bengal, clinched the first prize for his short film, Doko Ko Chehri. Chief Minister Mr. Prem Singh Tamang in his address said, "In this momentous milestone, we are honored with the Sikkim International Film Festival under the patronage of Government of India." Tamang extended his gratitude to Ministry of Information and Broadcasting and National Film Development Corporation of India, NDFC, for constant support. Tamang also extended heartfelt thanks to Prime Minister of India, Narendra Modi. Sikkim International Film Festival has been regarded as a meeting place for art, culture and creative economy for our youth. Cinema is a powerful tool for storytelling to connect beyond the boundaries. Tamang said, "I am pleased to know to collaborate with European Union." Said this will help people of Sikkim to interact to film lovers across the globe. Workshops led by industry veterans like Imtiaz Ali will help future filmmakers to have hands-on experience that they can implement in their endeavors. Tamang said, "Since 2019, Sikkim is fully contributing to the vision of Prime Minister Narendra Modi to become an integral part of Viksit Bharat by 2047. Sikkim International Film Festival will also feature a SIFF market at Chintan Bhavan at Gangtok from tomorrow to 22nd March. With Manush Pradeep Sharma, this is Moinak Chatterjee for Akashvani News, Gangtok.
Or... अब बात करते हैं रायपुर की, जहां देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसमें भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 25 मार्च से शुरू होंगे और 3 अप्रैल तक चलेंगे। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में इनका आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 7 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल हैं। इसके अलावा 2 डेमो गेम मलखंब और कबड्डी को भी इसमें शामिल किया गया है। हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और तीरंदाजी की स्पर्धाएं रायपुर में होंगी, वहीं जगदलपुर में एथलेटिक्स और अंबिकापुर में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होंगी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 30 राज्यों के करीब 2500 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
The election department in Puducherry is implementing the Meyporul 2.0 initiative to promote awareness and build resilience against misinformation among citizens, especially the youth. We have more from a correspondent.
എപ്പൊരുൾ യാറിയാർ വായിക്കേൽപ്പിനും അപ്പൊരുൾ മെയ്പൊരുൾ കാൺപത് അറിവ്. ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദിസ് തിരുക്കവൽ വിസ്ഡം, ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എംഫസിസ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ടു ഡിസേൺ ദ ട്രൂത്ത് ഇൻ എവറിഥിങ് ബൈ ഹൂം സോ വാസ് സ്പോക്കൺ ഈസ് വിസ്ഡം. ദ മെയ്പൊരുൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ 2024 ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് ആൻഡ് മെയ്പൊരുൾ 2.0 കണ്ടിന്യൂസ് ദിസ് എഫേർട്ട് ആസ് എ ഫോക്കസ്ഡ് ഫോളോ പ്രോഗ്രാം. ദ ടേം മെയ്പൊരുൾ ഇൻ തമിഴ് ഇറ്റ്സെൽഫ് റിഫ്ലക്ട്സ് എ ഡീപ് ഫിലോസഫിക്കൽ എസെൻസ്. മെയ് മീനിങ് ട്രൂത്ത് ഓർ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് പൊരുൾ ഡിനോട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്, ടുഗദർ സിംബലൈസ് the pursuit of authenticity. The initiative engages college students and general public through interactive sessions on fake news, its psychological impact, and the role of technology in amplifying misinformation. Launching the initiative, Puducherry Chief Electoral Officer P. Jawahar highlighted that misinformation and fake news on social media remain a major challenge during elections. He further stated that under Meyporul 2.0, apart from widespread public sensitization, a dedicated social media monitoring cell functions in the CEO office to track misinformation trends and initiate action under relevant provisions of the IT Act. A key focus of the program is on understanding social media bubbles or echo chambers. These are environments where users are exposed to primarily to information that aligns with their existing beliefs. Participants will learn how algorithms reinforce such bubbles, limiting diverse perspectives and accelerating the spread of misinformation. They will also be equipped with the practical strategies to break out these cycles. The sessions provide essential fact-checking tools, including verifying sources, analyzing URLs, cross-checking information with the credible platforms, assessing author credibility, conducting reverse image searches, and reading beyond headlines. Emphasis is placed on developing a rational and critical mindset. Public, especially youth, will also be encouraged to rely on official platforms and verified handles of the Chief Electoral Officer Puducherry and Election Commission of India for authentic information. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
और मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने के लिए सभी स्थानीय निकायों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। पेश है ये रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते कल मंगलवार को कैबिनेट बैठक के पूर्व जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कल यानी 19 मार्च से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हो रही है, जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने स्थानीय निकायों से कुओं, बावड़ियों और नदियों के पुनरुद्धार के लिए सक्रिय भूमिका निभाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक शहरी क्षेत्रों में 3,000 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जा चुका है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 86,000 से अधिक खेत, तालाब और 550 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। भूजल संवर्धन के लिए 1,00,000 से अधिक कुओं के पुनर्भरण का कार्य भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 22 मार्च तक जल महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हर घर जल के लिए केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण करार हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश में पेयजल आपूर्ति को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी विक्रम संवत नववर्ष और गुड़ी पड़वा के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
द मंथ लॉन्ग उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा किक्स ऑफ टुडे इन गुजरात। Lakhs of devotees from across India gather for this 30-kilometer spiritual journey along the holy river Narmada. A correspondent reports that the state government has introduced a mandatory digital registration system and set up modern facilities to facilitate the pilgrims. We have a report.
नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा स्थित रामपुरा से शुरू होने वाली यह 30 किलोमीटर की पावन यात्रा परिक्रमा माह को पूरा कर पुनः रामपुरा ही समाप्त होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने इस बार डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य किया है। यात्राधाम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्राप्त QR कोड को स्कैन करने के बाद ही परिक्रमा शुरू की जा सकती है। 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 30 किलोमीटर के इस मार्ग पर RFID तकनीक और CCTV सहित कई अन्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार इस आध्यात्मिक यात्रा में भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जहां साल 2024 में 4,00,000 श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की थी, वही पिछले वर्ष यह संख्या 10,00,000 के पार पहुंच गई है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
Yes, now on to some business news. And benchmark domestic equity indices plunged over 3% today amid a broad-based sell-off. The Sensex nosedived 2,497 points or 3.26% to close at 74,207, while the Nifty tumbled 776 points or 3.26% to settle at 23,002. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
19 मार्च को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नल शौकत मलिक ने म्यारिम बाम कोइरेंग सिंह और INA के अन्य सदस्यों सहित मणिपुर के निवासियों की मदद से मोरांग में तिरंगा फहराया।
सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जिस ध्वज को मान्य किया था वो पूर्ण स्वराज ध्वज का रूपांतर था। इसमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी पर आजाद शब्द और नीचे की हरी पट्टी पर हिंद शब्द लिखा था और बीच की सफेद पट्टी पर गांधी जी के चरखे की जगह आक्रमण को आतुर बाघ का चित्र था, जो INA की प्रबल शक्ति और संघर्ष की अदम्य इच्छा का प्रतीक था।
इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में की थी। सुदूर पूर्व में जापान के भारतीय युद्ध बंदियों के साथ निर्वासित राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी।
1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने इस मुक्ति सेना में नई जान फूंक दी। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक के दौरान रास बिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सेना को पुनर्गठित करने में समर्थ रहे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित भारतीयों का भरपूर समर्थन मिला।
उन्होंने INA में शामिल होकर और वित्तीय रूप से भी सहयोग किया। इंडियन नेशनल आर्मी में एक पृथक महिला इकाई सहित लगभग 85,000 सैनिक थे। महिला यूनिट रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। आईएनए ने इंपीरियल जापानी आर्मी के साथ मिलकर बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेना का और बाद में मित्र राष्ट्र की सेना का मुकाबला किया।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे का भी स्मरण कर रहे हैं। नारायण भास्कर का जन्म 19 मार्च 1884 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था।
पेशे से चिकित्सक नारायण भास्कर 1916 से 1938 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस प्रांतीय कांग्रेस समिति और नागपुर के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। वे एक राष्ट्रवादी मराठी पत्र तरुण भारत के संस्थापक और संपादक भी थे।
और आधुनिक हिंदी के प्रमुख कवि केदारनाथ सिंह की आज पुण्यतिथि है। केदारनाथ सिंह ने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत एक गीतकार के रूप में की। केदारनाथ सिंह हिंदी के ऐसे अनोखे कवि थे जिन्होंने लोक संवेदना, ग्रामीण संवेदना और कस्बाई संवेदना के लिए आधुनिक हिंदी काव्य भाषा के बीच में जगह बनाई और उसे अपने तरीके से विकसित किया। 2014 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कविता में बिंब के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बनारस को अपने शब्दों में कुछ यूं पिरोया। उन्होंने शहर बनारस की खूबियों के बारे में लिखा। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है।
Yes, and if I may add, one of Kedarnath Singh's major poems is Bagh, a long poem with a tiger as a central character. Published in the mid-1980s, the poem remains one of the most widely read long poems in Hindi literature and is included in many university curricula. At some level, Bagh bears a striking resemblance to Ted Hughes' Crow, but the two remain independent in their treatment and scope.
और अभिनेता नवीन निश्चल की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 में फिल्म सावन भादो से की। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203, धुंध परवाना, बुढ़ा मिल गया जैसी कई चर्चित फिल्मों में उन्होंने काम किया। 90 के दशक में उन्होंने छोटे पर्दे पर देख भाई देख जैसा एक प्रसिद्ध धारावाहिक भी किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म बुढ़ा मिल गया से ये गीत।
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे।
भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखिका साई परांजपे का आज जन्मदिन है। उन्होंने पुरस्कार विजेता फिल्में स्पर्श कथा, चश्मे बदूर और दिशा का निर्देशन किया। 2006 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Yes, and Yogesh was born on this day in 1943. He was a writer and lyricist. He was known for his contributions to Bollywood and possibly his best known works came from the film Anand. Songs including Kahin Dur Jab Din Dhal Jaye and Zindagi Kaisi Hai Pehli in 1971. And also Rajni Gandha Phool Tumara. So let's go ahead and listen to a medley of his hit songs.
Kahin dur jab din dhal jaye saanj ki dulhan badan churaye chupke se aaye mere khayalon ke aangan mein koi sapnon ke दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
रजनी गंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही जीवन में हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे।
और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।